नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दशक को भारत का तकनीकी युग बताया। कहा, प्रौद्योगिकी, एआई और सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में देश की पहल से पूरी दुनिया को लाभ मिलेगा। विश्व की सबसे बड़ी और पहली डिजिटल जनगणना 2027 आज से शुरू। मकान सूचीकरण और आवास गणना का पहला चरण इस वर्ष सितंबर तक पूरा होगा। नए आयकर अधिनियम, डिजिटल भुगतान के लिए दो चरणों में सत्यापन और पैन कार्ड आवेदन के लिए संशोधित नियम आज से लागू। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में 9 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2 से 3 सप्ताह के अंदर ईरान युद्ध समाप्त करने की घोषणा की। और आईपीएल क्रिकेट में पंजाब किंग्स ने गुजरात टाइटंस को 3 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये दशक भारत के तकनीकी विकास का दशक है और प्रौद्योगिकी, एआई तथा सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में देश की पहल से पूरी दुनिया को लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री ने कल गुजरात के सांणंद में केयंस सेमीकंडक्टर के आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट ओएसएटी संयंत्र के उद्घाटन के बाद ये बात कही।
भारत का मानना है 21वीं सदी का एक कालखंड सिर्फ इकोनॉमिक कंपटीशन का समय नहीं है, ये फ्यूचर के टेक लैंडस्केप को शेप करने का समय है। इसलिए इस डेकेड को भारत का टेकेड कहता हूं। इस दशक में भारत टेक्नोलॉजी से जुड़े जो इनिशिएटिव ले रहा है वो आने वाले दशकों में भारत की लीडरशिप को सशक्त करेंगे।
प्रधानमंत्री ने गुजरात के वावथराद जिले के नानी में लगभग 20,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया संघर्ष के बावजूद भारत ने स्थिति को नियंत्रण में रखा है।
भारत की हमेशा से बड़ी ताकत रही है, कितना ही कठिन समय क्यों ना आए, मुश्किल के समय हमारा देश एकजुट होकर खड़ा होता है। बीते कुछ समय से आप देख रहे हैं दुनिया के कई देश युद्ध, अशांति और अस्थिरता से घिरे हैं। वेस्ट एशिया में जो हालत बने हुए है उनका असर पूरी दुनिया पर है। ऊर्जा जरूरतों की, डीजल, पेट्रोल और गैस की दिक्कत पूरी दुनिया में बढ़ गई है। ऐसे संकट में भी भारत ने हालातों को नियंत्रण में बनाए रखा है।
प्रधानमंत्री ने कल गांधीनगर के कोबा में सम्राट संप्रति संग्रहालय का भी उद्घाटन किया। लोकसभा में आज विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा होगी। ये विधेयक विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम 2010 में संशोधन करेगा। आज ही जन विश्वास प्रावधान संशोधन विधेयक 2026 पर भी चर्चा होनी है। उधर राज्यसभा में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सामान्य प्रशासन विधेयक 2026 और दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा होगी। विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या प्रक्रिया जनगणना 2027 का पहला चरण आज से शुरू होगा। जनगणना दो चरणों में आयोजित की जाएगी। पहले चरण में मकान सूचीकरण और दूसरे चरण में जनसंख्या की गणना होगी। इसके लिए 1 मार्च 2027 को संदर्भ तिथि निर्धारित की गई है। एक रिपोर्ट।
पहली बार जनगणना डिजिटल माध्यम से होगी। इसमें स्वगणना का विकल्प भी उपलब्ध होगा। यह स्वगणना आज से 15 अप्रैल तक जारी रहेगी। मकान सूचीकरण और आवास गणना 16 अप्रैल से शुरू होकर 15 मई तक जारी रहेगी। मकान सूचीकरण में सभी भवनों और संरचनाओं की सूची तैयार की जाएगी तथा आवासीय स्थिति, उपलब्ध सुविधाओं और परिसंपत्तियों से संबंधित जानकारी जुटाई जाएगी। भवनों की जियो टैगिंग भी की जाएगी और प्रत्येक संरचना को एक विशिष्ट पहचान संख्या दी जाएगी। देश भर में इस कार्य के लिए 30 लाख से अधिक गणना कर्मी, पर्यवेक्षक और अन्य अधिकारी तैनात किए गए हैं। इसके साथ ही नागरिक 16 भाषाओं में अपनी जानकारी ऑनलाइन दर्ज करा सकेंगे। दूसरा चरण अगले वर्ष फरवरी में आयोजित किया जाएगा। इसमें आयु, लिंग, व्यवसाय, साक्षरता और जाति संबंधी विवरण एकत्र किए जाएंगे। केंद्र सरकार ने जनगणना 2027 के लिए 11,718 करोड़ रुपए से अधिक राशि को मंजूरी दी है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
भारत के महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में बताया कि ये जनगणना पिछली जनगणना से अलग है। उन्होंने विदेश में रहने वाले भारतीयों की इस जनगणना में भागीदारी करने के तरीकों को भी स्पष्ट किया है।
प्रथम चरण बेसिकली मकानों की गणना और मकान सूचीकरण है। इसमें अगर बाहर रहते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता। हम दूसरे चरण में जब एक व्यक्ति की गणना कराते हैं तो उसमें जो बाहर रहने वाले हैं उनको एम्बेसी के माध्यम से उनकी गणना कराने की व्यवस्था है।
आज से नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत के साथ ही प्रमुख वित्तीय नियमों में बदलाव सहित कई सुधार लागू हो जाएंगे। एक रिपोर्ट।
नए वित्त वर्ष के पहले दिन आज नए आयकर अधिनियम 2025 ने 6 दशक से भी अधिक पुराने आयकर अधिनियम 1961 का स्थान ले लिया है। इसे पुराने प्रावधानों को हटाकर जटिल नियमों को सुव्यवस्थित करके और करदाताओं के लिए अनुपालन को अधिक सरल बनाकर प्रणाली को आसान बनाने के उद्देश्य से तैयार किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशानुसार आज से देश में सभी डिजिटल भुगतान लेन देन के लिए 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन यानी 2 कारक प्रमाणीकरण के मानदंडों को पूरा करना अनिवार्य होगा। वित्त वर्ष 2026-27 के लिए फास्टैग वार्षिक पास का संशोधित शुल्क भी आज से लागू होगा। इसके साथ ही अस्थायी खाता संख्या पैन कार्ड के लिए आवेदन करने या उसे अपडेट करने के संशोधित नियम भी आज से प्रभावी होंगे। अनुपम मिश्र के साथ अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी असम में आगामी विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए आज राज्य के दौरे पर हैं। एक रिपोर्ट।
भाजपा उम्मीदवारों के समर्थन में प्रधानमंत्री आज 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। पहली रैली सुबह 11 बजे धीमाजी जिले के गोगामुख में होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री विश्वनाथ जिले के बेहाली जाएंगे, जहां वे 1 बजे दूसरी रैली को संबोधित करेंगे। इस रैली में वे 3 महत्वपूर्ण निर्वाचन क्षेत्रों विश्वनाथ, बेहाली और गोहपुर के मतदाताओं को संबोधित करेंगे। असम में अपने कार्यक्रम पूरे करने के बाद प्रधानमंत्री आज नई दिल्ली लौट आएंगे। अमीनुल हक जवादर की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से दुर्गा प्रसाद।
असम के 126 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 9 अप्रैल को एक ही चरण में मतदान होगा। दिसपुर LAC असम के प्रमुख और प्रतिष्ठित निर्वाचन क्षेत्रों में से एक है। इस विधानसभा सीट के बारे में अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता।
33 नंबर दिसपुर विधानसभा क्षेत्र असम के 126 निर्वाचन क्षेत्रों में से एक है। आगामी चुनाव के लिए मतदान 9 अप्रैल को होना निर्धारित है। वर्तमान विधानसभा चुनाव में दिसपुर के 5 उम्मीदवार मैदान में है। भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्युत बरतोले को उम्मीदवार बनाया है, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मीरा बोठाकुर गोस्वामी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। बल्लभ पात्रा आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार है, जबकि जयंत कुमार दास और आयुष कुमार सिंह स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। भारत के निर्वाचन आयोग के अनुसार दिसपुर में 2,43,000 से अधिक मतदाता है। अमीनुल हक जद्दार, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के हंसखाली नदिया जिले के ब्लॉक विकास अधिकारी सायंतन भट्टाचार्य को मतदान कर्मी पर हमले की घटना के बाद निलंबित कर दिया है। ये घटना राणाघाट में एक प्रशिक्षण सत्र के दौरान हुई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में कल 30 लाख रुपए के कुल इनाम वाले 9 नक्सलियों ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। ये नक्सली छत्तीसगढ़ में सक्रिय इंद्रावती क्षेत्रीय समिति और राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्रीय समिति के सदस्य थे। पुलिस अधीक्षक नीलोत्पल ने बताया कि गढ़चिरौली जिले में अब केवल 6 सशस्त्र वर्दीधारी नक्सली ही सक्रिय बचे हैं। इससे पहले छत्तीसगढ़ के बस्तर में कल 33 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया, जिनमें 17 महिलाएं भी शामिल हैं। महानगरों में तेल विपणन कंपनियों ने व्यावसायिक LPG सिलेंडरों की कीमतों में 195.50 रुपए की वृद्धि की है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड की वेबसाइट के अनुसार दिल्ली में व्यावसायिक LPG सिलेंडरों की खुदरा कीमत अब 2,078.50 रुपए हो गई है। कोलकाता में व्यावसायिक LPG की कीमत बढ़कर 2,208 रुपए हो गई है। 19 किलोग्राम के व्यावसायिक LPG सिलेंडर की संशोधित कीमत आज से लागू हो गई है। हालांकि घरेलू LPG सिलेंडरों की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ युद्ध अगले 2 से 3 सप्ताह के भीतर समाप्त कर दिया जाएगा। मीडिया से बातचीत में राष्ट्रपति ट्रंप ने अमरीकी सेना के ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के जल्द पूरा होने की बात कही। उन्होंने कहा कि क्षेत्र से वापस लौटने से पहले अमरीका ईरान की हर उस क्षमता को निष्क्रिय करना चाहता है जो उसके लिए खतरा बन सकती है। उन्होंने युद्ध समाप्त करने से पहले एक संभावित समझौते का भी संकेत दिया। इससे पहले अमरीकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा था कि अमरीका का मिशन पहले दिन से स्पष्ट था। उन्होंने कहा कि ईरान के खतरे को पूरी तरह से खत्म करने का ये अंतिम और सबसे अच्छा मौका है। आईपीएल क्रिकेट में चंडीगढ़ में पंजाब किंग्स ने गुजरात टाइटंस को 3 विकेट से हरा दिया। गुजरात टाइटंस ने निर्धारित 20 ओवर में 162 रन बनाए। आज शाम 7:30 बजे लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला दिल्ली कैपिटल से होगा। 16वीं हॉकी इंडिया राष्ट्रीय सब जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप 2026 का शुभारंभ आज रांची में होगा। ये प्रतियोगिता 12 अप्रैल तक चलेगी। मैच आज सुबह से खेले जाएंगे जबकि उद्घाटन समारोह शाम 4:30 बजे आयोजित किया जाएगा। अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय में आज भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और तेलंगाना में कल तक गरज और ओलावृष्टि की संभावना व्यक्त की है। झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, पूर्वी राजस्थान, कोंकण और गोवा में आज गरज के साथ बिजली चमक सकती है। ओडिशा आज अपना 91वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस दिन को उत्कल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
धन्यवाद जागृति। आज से नया आयकर कानून लागू होने और जनगणना की शुरुआत लगभग सभी अखबारों की प्रमुख खबर है। नवभारत टाइम्स लिखता है टैक्स टोल ट्रेन आज से बदले नियम, पैन कार्ड के लिए भी नियमों में हुआ बदलाव। दैनिक जागरण की सुर्खी है टोल प्लाजा पर आज से 100% डिजिटल पेमेंट, जिन गाड़ियों के पास वैध फास्टैग नहीं है या जिनमें पर्याप्त बैलेंस नहीं है उन्हें जुर्माना देना पड़ सकता है या टोल प्लाजा पर रोका जा सकता है। नए आयकर कानून पर अमर उजाला लिखता है 65 साल पुराना कानून अब इतिहास, आसान होगी भाषा, कर नहीं देने वालों के लिए अलग अलग फॉर्म की जरूरत भी खत्म। पंजाब केसरी ने आत्मनिर्भरता पर जोर शीर्षक से लिखा है श्री मोदी ने मेड इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड का मंत्र दिया। गुजरात में वैश्विक संकट पर दिए गए प्रधानमंत्री के बयान को लोकसत्ता ने प्रमुखता दी है। भारत ने स्थिति संभाली, विपक्ष ने फैलाई अराजकता। जनसत्ता की सुर्खी है होरमूज जलमार्ग खुलवाए बिना युद्ध खत्म करने के इच्छुक ट्रंप। हिंदुस्तान लिखता है हमलों से भड़के ईरान की धमकी, अमरीकी कंपनियों को उड़ा देंगे। राजस्थान पत्रिका ने सुरक्षा अभेद्य शीर्षक से खबर दी है अमरीकी सेंटकॉम का एक्शन देख भारत में थिएटर कमान बनाने में तेजी, 1-2 माह में आर्मी, एयरफोर्स, नेवी की जॉइंट पहली कमान संभव। दैनिक भास्कर ने अपने संपादकीय पृष्ठ में लिखा है युद्ध से बाहर निकालने का रास्ता तलाश रहे ट्रंप। दैनिक ट्रिब्यून ने मौसम विभाग के हवाले से लिखा है इस बार देश में गर्मी छुड़ाएगी पसीने, इस महीने देश में सामान्य से अधिक बारिश होने की संभावना।
और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दशक को भारत का तकनीकी युग बताया। कहा प्रौद्योगिकी, एआई और सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में देश की पहल से पूरी दुनिया को लाभ मिलेगा। विश्व की सबसे बड़ी और पहली डिजिटल जनगणना 2027 आज से शुरू। मकान सूचीकरण और आवास गणना का पहला चरण इस वर्ष सितंबर तक पूरा होगा। नए आयकर अधिनियम, डिजिटल भुगतान के लिए 2 चरणों में सत्यापन और पैन कार्ड आवेदन के लिए संशोधित नियम आज से लागू। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में 9 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2 से 3 सप्ताह के अंदर ईरान युद्ध समाप्त करने की घोषणा की। और आईपीएल क्रिकेट में पंजाब किंग्स ने गुजरात टाइटंस को 3 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।